उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता अक्सर कहा करते थे, बहुगुणा के नाम पर मत जाइए, उनका व्यक्तित्व और चरित्र उसके ठीक उल्टा है। अपने आप में हासे तिकड़मी रहे सीबी गुप्ता को बहुगुणा की तिकड़म का स्वाद तब चखना पड़ा जब 1974 के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ लखनऊ में न सिर्फ वो हारे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब दोनों एक पार्टी में आ गए तो गुप्ता ने बहुगुणा से पूछ ही लिया, बहुगुणा अब बता ही डालो कि 1974 में तुमने किया क्या था। बहुगुणा अपनी शर्मीली मुस्कान बिखेर कर बोले थे, पुरानी बातों को भूल जाइए बाबूजी। 77 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मतपेटियों को सेफ हाउस में रखा गया तो बहुगुणा ने यह सुनिश्चित करवाया कि उस सेफ हाउस के रोशनदान तक को सील करवाया जाए। चंद्रभानु गुप्ता ने उस समय बड़ी बारीक और दिलचस्प टिप्पणी की थी, अब मुझे पता चला कि उस चुनाव में मेरी जमानत क्यों जब्त हुई थी। इस घटना में सच्चाई हो या न हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने जमाने में हेमवती नंदन बहुगुणा की गिनती भारत के सबसे चतुर नेताओं में होती थी। बहुगुणा को नजदीक से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार बीएन उनियाल कहते हैं,
बहुत तेज थे, मेधावी थे, बहुत जल्दी किसी भी इंसान को पहचानते थे, जिसे कहते हैं कि किसी के नस और नब्ज पहचानना। उस दौर में पूरे यूपी की ऐसी जानकारी उनको हासिल हो गई थी कि हर जिले के पंचायत से लेके ब्लॉक तक और राज्य स्तर तक हर शख्स को जानते थे, नाम से जानते थे, चेहरे से जानते थे, और खाली कांग्रेस के नहीं, सभी पार्टियों के हर शख्स को जो था जानते थे। और खाली जानना ही नहीं था, जैसे गोट बिठाना कहते हैं, जुगत लगाना, जानते थे किसकी नब्ज कहाँ है, कौन किसकी सुनता है, किसका किस पे असर है, किसके कहने से कौन क्या करेगा, कौन ना कहेगा, कौन हाँ कहेगा, कैसे इससे हाँ कहलवाना है।
बहुगुणा की राजनीति की शुरुआत इलाहाबाद से हुई थी, जहाँ वो छात्र नेता और फिर मजदूर नेता हुआ करते थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान तब बनी जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रही राजकुमारी अमृत कौर का चुनाव लड़वाने उन्हें मंडी भेजा।
1952 में जब पहला चुनाव हुआ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश से मंडी महासू एक कॉन्स्टिट्यूंसी है थी उस टाइम में, अब तो खाली मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से राजकुमारी अमृत कौर को टिकट मिला। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, लेकिन कभी पहाड़ गई नहीं थी, तो कुछ दिन में वो तंग आ गई। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ, मुझे भेज दिया जवाहरलाल तुमने। उन्होंने शास्त्री जी को कहा, भाई वो इलाहाबाद में एक था ना, वो पहाड़ी लड़का था, वो पहाड़ी पहाड़ी वो भगोना भगोना, वो कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा जी वही होगा। बोले भेजो उसको, उसको भेजना है मंडी भेजो, उसे बोला अमृत के पास जाएगा, मदद करेगा अमृत, बुलाओ दिल्ली उसको। मुझे कहा करते थे कि मुझे मालूम था मंडी कहाँ है, हिमाचल ये एरिया अलग था कांगड़ा मंडी का, हम गढ़वाल के, लेकिन जवाहरलाल समझते थे कि भाई एक पहाड़ी सारा पहाड़ी, तो ये सोच के हमको यहाँ उन्होंने भेज दिया। तो वहाँ 2-3 महीना राजकुमारी अमृत कौर के साथ रहे। उन्होंने आगे जवाहरलाल से कहा, लड़का बहुत अच्छा है, इसने बड़ा काम किया है, वेरी यूजफुल टू मी। तो जवाहरलाल की नज़र में आ गए, जवाहरलाल की नज़र में आ गए तो लोकल कांग्रेस में भी इम्पोर्टेंट हो गए।
राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बहुगुणा अपनी तरफ से काफी जतन भी करते थे। मशहूर पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब ऑल द जनता मेन में बहुगुणा से जुड़ा एक मजेदार किस्सा लिखा था।
1951 में जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो इलाहाबाद आए। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुगुणा को बुलाकर कहा कि वो नेहरू के स्वागत के लिए एक बहुत बड़ी रैली करवाएं। बहुगुणा ने पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क में लोगों को जमा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब रैली हुई तो टंडन पार्क लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन बहुगुणा को मंच पर नहीं जाने दिया गया। वो भीड़ के पीछे चले गए और चाट खाने लगे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया, बत्ती चली गई और कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। लोग बेचैन हो उठे और भीड़ में से बहुगुणा बहुगुणा की आवाजें उठने लगीं। बहुगुणा भागते हुए मंच पर पहुंचे और उस पर उनके कदम रखते ही बत्ती वापस आ गई। लोगों ने नेहरू की उपस्थिति में ही नारा लगाया, बहुगुणा जिंदाबाद।
बहुगुणा के आलोचक कहते हैं कि उन्होंने ये सब स्टेज मैनेज किया था। 1971 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें पहले अपने मंत्रिमंडल में संचार राज्य मंत्री बनाया और फिर 1974 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें लखनऊ भेजा। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही उनके इंदिरा गांधी से मतभेद शुरू हो गए। खुद बहुगुणा ने एक बार बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
मेरे मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी से और मुझसे बुनियादी एक बात पर पहले ही झगड़ा हो गया। उनका ख्याल था कि मैं हर काम उनसे पूछ के करूं। मेरा कहना था कि बैक सीट ड्राइविंग संभव नहीं है। इतने बड़े प्रदेश का काम चलाने के लिए जो मुख्यमंत्री है उसको अपना निर्णय करना होगा, और मैंने उनसे साफ कहा कि मेरे कंधे पर आपका सर नहीं हो सकता। वो चाहती थी कि मैं उनके लड़के को लेकर उत्तर प्रदेश में घूमूं, जैसे राजस्थान और दूसरी जगह के मुख्यमंत्री घूम रहे थे। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा अपने पैरों इनको चलना होगा, काम करें, आगे बढ़ें, मेरे कंधे पर नहीं हो सकता।
उसी दौरान मशहूर उद्योगपति के बिरला ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा। उन्हें इंदिरा गांधी का समर्थन हासिल था, लेकिन बहुगुणा ने उनका विरोध किया, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री हैं, बताती हैं।
के बिरला की आप जीवनी उठा लीजिए। के बिरला ने बहुगुणा जी पे पूरे 5-6 पन्ने लिखे। इंदिरा जी ने उनको समर्थन दिया, लेकिन गुप्त रूप से, खुलकर नहीं, और ना ही उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया। पिताजी का कहना था कि अगर पार्टी इनको उम्मीदवार बनाए तो मैं जिताऊंगा, वरना मेरे पिताजी देखिए लेफ्ट टू सेंटर की पॉलिटिक्स करते थे, समाजवादी सोच थी, वो वामपंथी लोगों के साथ ज़्यादा उनका विचारधारा मिलती थी। उन्होंने कहा मैं एक पूंजीपति को बिना पार्टी का टिकट मिले या बिना खुले समर्थन के मैं नहीं जिताऊंगा। संजय गांधी जी ने पापा को बुलवाया, ये नहीं गए। खुद आप पढ़ लीजिएगा उठाकर। के बिरला कहते हैं कि संजय गांधी जी ने कहा कि बहुगुणा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक कारण बना बहुगुणा के जाने का।
इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हो गई जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को भ्रम हो गया कि बहुगुणा उनकी कुर्सी हथियाने की फिराक में है।
उन्होंने लखनऊ में एक ग्लोबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कराई। बहुगुणा मुंतजिम बहुत अच्छे थे, किसी भी चीज को इंतजाम करना हो नजर रखते थे, और उन्होंने ढंग से किया वहां पर कि हर मुल्क का डेलीगेट दिल्ली आते हुए जब इंदिरा गांधी से मिला तो कहा कि साहब बहुगुणा बहुत काबिल है, और चारों तरफ उनकी वाह वाह होने लगी, खासकर मुस्लिम समाज में। अब जैसा होता है, हर दल में होता है, जब वाह वाह हुई तो 10 लोग उसके खिलाफ भी हो गए। उनमें एक मोहम्मद यूनुस इंदिरा गांधी के बहुत चहेते दरबारी लोगों में थे, उनको किसी काम से इंदिरा गांधी ने मिडल ईस्ट में तो लौट के आए, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि वहाँ जाके कुछ मेरा तो कोई फायदा नहीं, जिसके पास जाइए वही बहुगुणा की बात कर रहा था। हर शख्स ये कह रहा था कि बहुगुणा बड़े काबिल है आपके यहाँ। तो मोहम्मद यूनुस ने कहते हैं काफ़ी काम इंदिरा गांधी के पर है, लेकिन कहा गया था बहुगुणा जो है अपना ग्राउंड बना रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए।
सार्वजनिक जीवन में तेज तर्रार नेता की छवि रखने वाले बहुगुणा का निजी जीवन कैसा था? हमने रीता बहुगुणा से पूछा कि उनके पिता के राजनीति के अलावा और कौन कौन से शौक थे।
पिताजी पढ़ते बहुत थे, कोई चीज हाथ में आ जाए, और उनकी मेमोरी बहुत गजब थी, जिस चीज पे एक बार निगाह पड़ गई भूलते नहीं थे। उन्हें खाना बनाने का शौक था, और मुझे अच्छे से याद है कि जब बहुत मूड में होते थे तो कहते भाई आज चूल्हा जलाओ। उन जमाने में कोयले पे खाना बनता था अंगीठी पर, एंड ही वाज अ वंडरफुल कुक। इतना बेहतरीन भोजन बनाते थे, पर वो स्पेशल चीज़ें बनाते थे, और वो हम लोगों का उस दिन पिकनिक डे होता था। लेकिन जब पापा मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद तो ये संभव नहीं हुआ। वो पुलाव बहुत अच्छा बनाते थे, सब्जियां जो हाथ लगा देते थे पिताजी वो उसमें तो जैसे समझ लीजिए स्वाद ही स्वाद भर जाता था। अच्छा, वो नॉन वेजिटेरियन थे तो नॉन वेज खाना बहुत अच्छा बनाते थे। म्यूज़िक का शौक उन्हें ज़्यादा नहीं था, संगीतकारों में सहगल के गाने उनको अच्छे लगते थे। ओल्ड टाइम
जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे।
जब 1977 में जब आम चुनाव की घोषणा हुई तो बहुगुणा ने जगजीवन राम से मिलकर उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देने के लिए मनाया। जनता पार्टी की चुनावी जीत में इस घटनाक्रम की बहुत बड़ी भूमिका रही।
चौहान साहब से मिले, चौहान साहब ने कहा कि क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, चौहान साहब उनको हाथ पकड़ के बाहर लॉन में लाए कि अंदर टेलीफोन पर कहीं कोई यंत्र लगा हो, कुछ लगा हो सुन लें। तो चौहान साहब लॉन में बात करते थे, उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो बबुना? नहीं नहीं, मैं कांग्रेस से बाहर नहीं मरना चाहता। बाबूजी इसके साथ में कोशिश कामयाब होने में बहुत अरसा लगा। मिलने के लिए भी बड़ा तंत्र मंत्र करना पड़ता था। हमारे जैसे दोस्त लोग काम आते थे, वो कहीं से टैक्सी लेके आए, इंडिया गेट में उतर गए, वहाँ से पैदल जयपुर हाउस तक आ गए, वहाँ हम गाड़ी लेके चले गए। कई जगह दसों गाड़ियाँ बदलते बदलते उनको छोड़ते थे। मिलने के लिए भी बड़ा तंत्र मंत्र करना पड़ता था। हमारे जैसे दोस्त लोग काम आते थे, वो कहीं से टैक्सी लेके आए, इंडिया गेट में उतर गए, वहाँ से पैदल जयपुर हाउस तक आ गए, वहाँ हम गाड़ी लेके चले गए। कई जगह दसों गाड़ियाँ बदलते बदलते उनको छोड़ते थे। तो बाबू जी को कुछ लगा के संभव है, और वो संभावना और ज़्यादा तब बढ़ गई जब एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग बबुना जी की, EMS नंबूद्रीपाद की और राजेश्वर राव की, किसी पत्रकार के घर में डिफेंस कॉलोनी में हुई। बाबूजी पे सबसे ज़्यादा असर बबुना जी के कहने का से ज़्यादा बाबूजी का बेटा था सुरेश राम। सुरेश राम को दिखाई दिया कि बाबूजी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो सुरेश राम प्लेड ए बिग रोल इन दैट, एंड बबुना जी यूज सुरेश राम टू परसुएड बाबूजी।
जनता पार्टी सरकार चल नहीं पाई और बबुना ने एक बार फिर इंदिरा कांग्रेस का दामन पकड़ा। वहां एक बार फिर इंदिरा गांधी से उनकी नहीं बनी और उन्हें फिर कांग्रेस छोड़नी पड़ी।
मुझे लगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रायश्चित की अग्नि में जल करके और जो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, तो शायद इनका मन बदल गया। फिर उनके बहुत बहुत लोग मेरे पास आए। 6 नवंबर को उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि आपके और हमारे मौलिक विचार एक हैं, फिर साथ एक क्यों ना हो, पुरानी बातें भूलिए और साथ करिए। फिर उसके बाद वो 14 नवंबर को मेरे घर पर आए और बड़ा काफला उनके साथ था, उनके लड़के भी साथ थे, संजय भी और राजीव भी और राहुल भी और प्रियंका भी। तो निर्णय हुआ, और दिल्ली में एक जगह है हिंदुस्तान टाइम्स के ठीक अपोजिट सेंट्रल पॉइंट, एक श्री KL भाटिया हैं, उनका वो होटल है। उस पर तय हुआ कि इस जगह दोनों हम मिलेंगे, और उनकी और मेरी मीटिंग 16, 17, 18, 19, 20 नवंबर को वहाँ हुई। रात को वो आती थी, धवन उनको ड्राइव करके लाता था और मैं भी अकेले जाता था, और मेरी उनके अकेले बात होती थी, और उनकी और मेरी नीति पर, रीति पर, व्यक्तिगत रिश्तों पर सारी चर्चा हुई। जब जीत गई और 7 तारीख को मैं मुबारकबाद देने गया श्रीमती इंदिरा गांधी को, तो खैर मिले तो बहुत ठीक। मेरे पास तब तक खबर आ गई थी, पर मैं अभी भी चुप था कि हो सकता है, क्या फ़ायदा बोलने से, कोई फ़ायदा नहीं। मैंने मुबारकबाद दिया तो उसी वक्त कहने लगी कि हाँ यहाँ तो जीत गए, लेकिन राज्यों का बबुना जी क्या होगा? आप कुछ सोचिए, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, नागालैंड सब हमारे साथ आ सकते हैं, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने कहा मतलब क्या दल बदल कराना पड़ेगा? कहेंगे हाँ, तो और कोई रास्ता नहीं, और अगर राज्य सरकारें हाथ में नहीं रही तो काम कैसे होगा, जो वादे हैं पूरे कैसे होंगे? मैंने कहा इंदिरा जी मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। कह रहे सब साथी यही कह रहे हैं। मैंने कहा इंदिरा जी सब साथी पहले भी आपको गलत राय देते रहे हैं, अब भी गलत राय दे रहे हैं।
बहुगुणा 1984 का संसदीय चुनाव अमिताभ बच्चन से हार गए। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर कभी उठ नहीं पाया। बहुगुणा शायद उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जिसकी कि उनके प्रशंसक या वो खुद उम्मीद करते थे, लेकिन एक बात तय थी, वो आम राजनेताओं से हट कर थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके पुष्पेश पंत कहते हैं,
मुझे लगता था कि एक व्यक्ति जिसने बड़े कौशल से और बड़ी दूरदर्शी दृष्टि से अपने को नेहरू के अक्स में ढालने की कोशिश की थी, वैसा ही चूड़ीदार पैजामा, वैसी ही शेरवानी, टोपी कुछ उसी तरह से बाकी तिरछी सर पर रखी हुई, तलफ़ुज उर्दू का उतना ही खालिस, हिंदी और अंग्रेज़ी में समान रफ्तार से बोलने की क्षमता, एक अपनी ऐसी पहचान बनाना कि छोटे पैमाने में कि मैं छोटा नेहरू हूँ और शायद किसी एक दिन उस कुर्सी पर जा के पहुँच सकता हूँ। दूसरी बात, जब तक मैं उनसे नहीं मिला था तब भी मुझे बार बार इस बात का एहसास होता था कि जिस तरह संगीत में संधि प्रकाश राग होते हैं, तो जो संधि होती है दिन के वक्त की, सवेरे की और शाम की, गोधूली वेला की और सवेरे अरुण के बाद सूर्योदय के बाद की, ये उस पीढ़ी के नेता थे कांग्रेस के जब आज़ादी मिली ही मिली थी इस देश को। मेरे ख्याल में हेमवती नंदन बहुगुणा जी के अपने दिमाग में जो अपनी छवि थी, वो विचारधारा के आधार पर विविधता में एकता वाली, वो हिंदू मुसलमान हो, वो शहरी और ग्रामीण हिंदुस्तान की बात हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, गरीब के हितों का सवाल हो, बहुगुणा जी की छवि कमोबेश आज़ादी के बाद की पीढ़ी वाले नेहरू सरीखे नेता की थी।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।